अध्याय 59 नकली विज्ञान शैतान का आधुनिक उज्ज्वल वस्त्र। नकली विज्ञान वह साधन है जिसका शैतान ने स्वर्गीय दरबार में प्रयोग किया था और आज भी काम मिलाता है। जो झूठे दावे उसने दूतों के सामने किए तथा उसके धूर्त वैज्ञानिक सिद्धांतों ने उनमें से बहुतों को स्वामी भक्ति से भटका दिया। स्वर्ग में अपने पद को खोकर शैतान ने अपने प्रलोभन हमारे प्रथम माता पिता के सामने उपस्थित किए। आदम और हवा ने शत्रु की अधीनता स्वीकार की और उनकी अवज्ञा से मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई और पृथ्वी स्वर्ग से जुदा हो गई। यदि आदम और हवा उस निषिद्ध वृक्ष को कभी न छूते तो परमेश्वर उनको ऐसा ज्ञान देता जिस पर पाप के शाप की छाप न होती, ऐसा ज्ञान जिससे उनको अनंत आनंद प्राप्त होता। उनको आज्ञा उल्लंघन पाप और उसके परिणाम से परिचय हुआ, यही उन्होंने प्राप्त किया। जिस क्षेत्र की ओर शैतान ने हमारे प्रथम माता पिता की अगुवाई की, आज भी वह मनुष्यों को उसी क्षेत्र में ले जा रहा है। वह संसार को मनोहर किस्से कहानियों से भर रहा है। उसके अधिकार के अंदर हर युक्ति द्वारा वह लोगों को परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त करने से, जिसे त्राण कहते हैं, रोकने की कोशिश में रहता है। भूल का प्रकाश दीखता। हम तेज प्रकाश के युग में रहते हैं, परंतु अधिकतर जिसे प्रकाश कहते हैं वह शैतान की विद्वता और कला कौशल के लिए मार्ग खोलना ही है। बहुत सी बातें जो पेश की जाती हैं असली सी प्रतीत होती हैं, तो भी उनको अधिक प्रार्थना के साथ सावधानी से सोच विचार करना चाहिए। हो सकता है कि वे शत्रु की दिखावटी युक्तियां हों। झूठ का मार्ग अक्सर सत्य मार्ग के पास पास ही चलता दिखाई देता है, जो सच्चा मार्ग पवित्रता और स्वर्ग को ले जाता है, और जो भूल मार्ग है उन दोनों में अंतर बहुत कठिनाई से पहचाना जाता है। परंतु पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशमान हृदय बूझ सकता है कि वह सही मार्ग से दूसरी दिशा को जा रहा है। थोड़ी देर के पश्चात दोनों एक दूसरे से बड़ा अंतर रखते दिखाई देते हैं। परमेश्वर एक है जो सारी प्रकृति में व्याप्त है। यह शैतान का अति धूर्त युक्तिमय सिद्धांत है। इससे परमेश्वर का मिथ्या वर्णन किया जाता है और उसकी महिमा और प्रभुत्व का अपमान होता है। सर्वेश्वरवाद सिद्धांत का, अर्थात सृष्टि ही बल है, परमेश्वर का वचन समर्थन नहीं करता। उसके सत्य का प्रकाश बतलाता है कि ये सिद्धांत आत्मध्वंसक साधन है और इच्छा को अनुचित स्वतंत्रता देते हैं। इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर से पृथकता होती है। हमारी दशा पाप के कारण अप्राकृतिक हो गई है, इसलिए वह शक्ति जो हमें पुनः स्वस्थ करे अलौकिक ही होनी चाहिए, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं है। एक ही शक्ति है जो मनुष्यों के हृदयों से बुराई के अधिकार को तोड़ सकती है, और वह यीशु मसीह में परमेश्वर की शक्ति है। केवल क्रूस पर चढ़ाए गए पुरुष के लोहू द्वारा पाप से शुद्धि हो सकती है। केवल उसका अनुग्रह हमें पतित प्रकृति की प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने और उनको पराजय करने के योग्य कर सकता है। यह अनुग्रह की शक्ति उस शिक्षा से नष्ट हो जाती है जो यह सिखाती है कि परमेश्वर एक सद्गुण जो हर कहीं और सब चीज में है। यदि परमेश्वर वह स्वप्न है जो सारी प्रकृति में व्याप्त है, तब तो वह सब मनुष्यों के हृदय में बसा है, और इसलिए पवित्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य को केवल अपने ही अंदर की शक्ति को उन्नत करना है। यदि इन सिद्धांतों का तर्कानुसार परिणाम तक अनुकरण किया जाए तो ये सारी मसीही शिष्टाचार पद्धति का सत्यानाश कर डालेंगे। वे प्रायश्चित की जरूरत का तिरस्कार करते हैं और मानव को स्वयं उसका त्राणकर्ता बनाते हैं। परमेश्वर के संबंध में ऐसे सिद्धांत उसके वचन को प्रभावहीन कर देते हैं, और जो इन्हें ग्रहण करते हैं आखिरकार इस खतरे में पड़ जाते हैं कि वे सारी बाइबल को एक किस्सा कहानी की पुस्तक जैसी देखने लगते हैं। हो सकता है कि वे पुण्य को पाप से बेहतर समझें, परंतु परमेश्वर को उसके प्रभुत्व से उतारकर वे मानुषिक शक्ति पर आश्रय रखते हैं जो बिना परमेश्वर के व्यर्थ हैं। असहाय मानव, इच्छा में कोई वास्तविक शक्ति नहीं है कि बुराई का प्रतिरोध करके उसको पराजय कर सके। आत्मा की किलाबंदी ढा दी जाती है। मनुष्य के सामने पाप को रोकने की कोई दीवार नहीं रहती। एक बार जब परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा की रोकथाम अस्वीकार कर दी जाती है, तब हम नहीं कह सकते कि वह कितने गहरे गढ़े में गिर जाएगा। जो इन ब्रह्मवाद सिद्धांतों को थामे रहते हैं वे अपने मसीही अनुभव से हाथ धो बैठेंगे। उनका परमेश्वर से नाता टूट जाएगा और अनंत जीवन को खो बैठेंगे। चुने हुए लोगों को धोखा देने की कोशिश। परमेश्वर और प्रकृति के विषय मिथ्यावाद की तालीम। जो संसार नास्तिकता से भर रही है उस पतित शत्रु की प्रेरणा है जो स्वयं धर्म पुस्तक का शिक्षा है और सत्य से खूब परिचित है कि यही लोगों को ग्रहण करने के लिए जरूरी है और उसका अनुभव है कि लोगों के मनों को उन बड़े सत्यों से फिरा देवे जो उनको पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहने को दिए गए हैं। सन 1944 के गुजर जाने के बाद हमें हर प्रकार की हठधर्मी का मुकाबला करना पड़ा। कुछ लोग जो ब्रह्मवाद सिद्धांतों को मानने लगे थे, जिनके लिए मुझे ताड़ना की साक्षियां दी गईं, अधर्मी शिक्षा के बाद दुराचार फैलता है, झूठ के पिता की ओर से ये प्रलोभन का चारा है और आत्मसंतुष्ट अपवित्र जनों की पश्चातापहीनता में अंत होता है। बीते हुए अनुभव दोहराए जाएंगे, भविष्य में पैशाचिक अंधविश्वास नई शक्ल धारण करेगा, अशुद्धियां मनभाव रीति से तथा चापलूसी से पेश की जाएगी, झूठे सिद्धांत प्रकाश के भेष में परमेश्वर के लोगों को पेश किए जाएंगे। इस प्रकार शैतान लोगों को और यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा देने की कोशिश करेगा। अत्यंत लुभाने वाले प्रभाव प्रयोग में लाए जाएंगे और लोगों के मनमोहन निद्रा से वशीभूत कर लिए जाएंगे। हर प्रकार की भ्रष्टता व पतन जैसी जल प्रलय से पूर्व के लोगों में पाई जाती थीं, लोगों के मनहरण के लिए उपस्थित की जाएगी। प्रकृति को परमेश्वर जैसी प्रतिष्ठा देना। मानव इच्छा को खुली स्वतंत्रता, भक्तिहीनों की सलाह, इन सब को शैतान साधन स्वरूप अपना विशेष मनोरथ सिद्ध करने के उपयोग में लाता है। अपने मनोरथ को सफल करने की खातिर वह दूसरे दिमागों पर अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग करेगा। सबसे शोकजनक ख्याल ये है कि उसके छलपूर्ण प्रभावाधीन मनुष्य ईश्वर भक्ति का रूप धारण करेंगे, परंतु परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध न रखेंगे। आदम और हवा की भांति जिन्होंने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया, आज भी बहुत से लोग भ्रांति के छलपूर्ण ग्रास पर गुजारा कर रहे हैं। शैतानी प्रतिनिधि झूठे सिद्धांतों को आकर्षक जामा पहनाते हैं। जिस तरह एदेन की वाटिका में शैतान ने सर्प के द्वारा बोलने से हमारे प्रथम माता पिता से अपना यथार्थ हुलिया छिपाया था, ये साधन मानव के मस्तिष्क में ऐसा पदार्थ डाल रहे हैं जो वास्तव में घातक भ्रांति है। शैतान का वशीकरण प्रभाव उनके ऊपर बना रहेगा जो परमेश्वर के साधारण वचन से फिरकर मनोहर कहानियों की ओर झुक जाते। जिन लोगों को अधिकांश प्रकाश प्राप्त हुआ है, उन्हीं की शैतान अति सतर्कता से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह जानता है कि यदि वह उनको धोखा खिला सके तो वे उसके नियंत्रणाधीन पाप को धार्मिकता के वस्त्र से सजाएंगे और बहुतों को पथ भ्रष्ट करेंगे। मैं सबसे कहती हूं, चौकसे रहिए, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय दूत की भांति मसीही कार्यकर्ताओं की सभा में हर मंडली में घूमता रहता है और सदस्यों को अपने पक्ष में जीतने की कोशिश करता है। मुझे आदेश हुआ है कि परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दें, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गलातियों 6:7। शैतान द्वारा प्रकृति को परमेश्वर ठहरने की योजना। तत्व तथा प्रकृति के नियमों का वर्णन करते हुए बहुत से लोग, यद्यपि इनकार नहीं करते, परमेश्वर के निरंतर और सीधे साधन को दृष्टि से अलोप कर देते हैं। वे ये ख्याल पेश करते हैं कि प्रकृति परमेश्वर के बिना स्वाधीनता से काम करती है और अपने में काम करने की शक्ति रखती है। उनके ख्याल में प्राकृतिक और अप्राकृतिक में विशेष अंतर है। प्राकृतिक के तो सामान्य कारण बतलाए जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से कोई संबंध नहीं रखते। पदार्थ तत्व बड़ा शक्तिशाली बतलाया जाता है और प्रकृति को देवी स्वरूप माना जाता है। ऐसा विचार किया जाता है कि पदार्थ विशेष संबंधों में रखा जाता है, और अचल नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिनमें परमेश्वर स्वयं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और कि प्रकृति को ऐसे विशेष गुण प्राप्त है और स्वाभाविक नियमों के अधीन रखी गई है, फिर उसे इन नियमों का पालन करने छोड़ दिया जाता है और उस कर्तव्य को समाप्त कर जिसके लिए शुरू में आज्ञा दी गई थी। ये मिथ्या विज्ञान है और परमेश्वर के वचन में उसका समर्थन करने के लिए कुछ सामग्री नहीं है। परमेश्वर अपने नियमों को लोप नहीं करता, परंतु वह निरंतर उनके द्वारा काम करता है और उन्हें अपना अस्त्र स्वरूप प्रयोग करता है। परमेश्वर के प्राकृतिक नियम स्वयं कार्य करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर प्रकृति में सदा व्यस्त रहता है। प्रकृति उसकी दासी है और जैसा चाहता है उसको चलाता है। प्रकृति अपनी कार्यशीलता में एक ऐसे प्राणी को सचेत उपस्थिति और सक्रियता की साक्षी देती है जो सारे कामों को अपनी इच्छानुसार चलाता है। प्रकृति के अंदर कोई ऐसी निजी शक्ति उपस्थित नहीं है कि प्रतिवर्ष पृथ्वी अपनी पैदावार पैदा करे तथा सूर्य के इर्द गिर्द भ्रमण करे, बल्कि एक असीम शक्ति का हाथ सर्वदा कार्यरत रहता है और इस ग्रह का पथ प्रदर्शन करता है। ये परमेश्वर की शक्ति है जो क्षण क्षण में कार्य करती हैं कि वह पृथ्वी अपनी कीली पर घूमने के कार्य में तत्पर रहे। मानव देह की यंत्रकला पूर्ण रीति से समझ में नहीं आ सकती। उसके रहस्यों की गुत्थी को चोटी के विद्वान भी नहीं समझ पाते। ये यंत्रकला का सा परिणाम नहीं है जो एक बार काम शुरू कर दिया जाए तो ये अपना कार्य जारी रखे कि नाड़ी खुद व खुद धड़कने लगे और एक सांस चलती रही। परमेश्वर ही में हम जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है। हर सांस हृदय की धड़कन एक सर्वव्यापक परमेश्वर की शक्ति का निरंतर प्रमाण है। धुरंधर विद्वान यहोवा परमेश्वर के रहस्यों को जिस प्रकार वे प्रकृति में प्रदर्शित हैं समझ नहीं सकते। ईश्वरीय प्रेरणा अनेक ऐसे प्रश्न पूछती है जिनका तीक्ष्ण बुद्धि पंडित भी उत्तर नहीं दे सकते। ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछे गए कि हम उनका उत्तर देवें, परंतु इसलिए कि परमेश्वर के गहन रहस्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करें और हमें सिखलाएं कि हमारा ज्ञान सीमित है, कि हमारे दैनिक जीवन के चारों ओर बहुत सी बातें हैं जो सीमाबद्ध बुद्धि की समझ से परे हैं, कि परमेश्वर के विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। उसकी बुद्धि अपरंपार है। जो शिक्षा का कार्य यहां आरंभ किया गया है उसकी समाप्ति इस जीवन में नहीं हो सकती। यह तो अनंत काल तक जारी रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और कभी समाप्त न होगा। परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्य, सृष्टि रचना और उसके संभालने में उसकी अद्भुत शक्ति के प्रमाण दिन नए सौंदर्य में मस्तिष्क के सामने खुलेंगे। सिंहासन से चमकते हुए प्रकाश में सारे रहस्य लोप हो जाएंगे और आत्मा उन बातों की साधारणता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएगी जो इससे पूर्व समझ में नहीं आई थी। सनसनी पूर्ण धर्म के प्रति चेतावनी। इस समय हमें परमेश्वर के काम में धार्मिक ख्याल के लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोग जो नियम के दृढ़ हों और जिनको सत्य का स्पष्ट ज्ञान है। मुझे आदेश हुआ है कि लोगों को नई तथा जोशीली तालीम की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसे मनुष्यों की साक्षी चाहिए जो सत्य को जानते और जीवन में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लोग जो तिमोथिये को दी गई आज्ञा को समझने तथा पालन करते हैं, कि तू वचन को प्रचार करे, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। पर कानों को खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरा तिमुथियुस 4:2-4। मजबूती से निश्चितता से चलिए, अपने पांवों में मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लीजिए। आपको निश्चय हो कि शुद्ध और निर्मल धर्माचार एक सनसनीपूर्ण धर्म है। परमेश्वर ने किसी के ऊपर काल्पनिक शिक्षा तथा सिद्धांतों के प्रति क्षुधा को प्रोत्साहन देने का दायित्व नहीं रखा है। मेरे भाइयों, इन बातों को अपनी शिक्षा से अलग रखिए, उनको अपने अनुभव में न आने दीजिए, अपना जीवन कार्य उनके द्वारा निष्फल न होने दीजिए। आत्मिक जीवन को पुनर्जीवित करने की जरूरत।
मुझे अपने लोगों से कहने का आदेश मिला है, आइए हम मसीह का अनुकरण करें, उसको सारी बातों में अपना नमूना होने को न भूलिए। हम उन विचारों को कुशलता से अलग करें जो उसकी शिक्षा में नहीं पाए जाते। मैं अपने कर्मचारियों से विनती करती हूं कि निश्चय कर लें कि पांव अनंत सत्य के प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। सावधान होना कि कहीं आप उमंग का अनुकरण न कर रहे हों और उसको पवित्र आत्मा कहने लगें। कुछ लोग इस दिश में हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि विश्वास में दृढ़ हों, और जो कोई उनसे उस विषय में जो उनमें है कुछ पूछे, उसको उत्तर देने को सदा तैयार रहें। शत्रु हमारे भाई और बहनों का ख्याल एक संप्रदाय को तैयार करने के काम से, कि वे इन अंतिम दिनों में कायम रह सकें, फेरना चाहता है। उसके मिथ्यावाद नुवाद का अभिप्राय ये है कि उस घड़ी के खतरों तथा कर्तव्यों से लोगों के ख्यालों को हटा लें। जिस प्रकाश को मसीह स्वर्ग से आकर योहन को देने आया कि वो उसे लोगों को पहुंचावे, वे उसका मूल्य शून्य के बराबर आंकते हैं। वे सिखलाते हैं कि जो हमारे आगे है इतना काफी महत्व नहीं रखते कि उन पर ध्यान आकर्षित किया जाए। वे उस स्वर्गीय उत्पत्ति के सत्य को अप्रभावित करते हैं और परमेश्वर के लोगों से उनका बीता हुआ अनुभव छीन लेते हैं और बदले में मिथ्या विज्ञान देते हैं। यहोवा यूं भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। यिर्मयाह 6:16। परमेश्वर खरी साक्षी की जो पिछले वर्षों में दी गई थी नवीनीकरण की मांग करता है। वो आध्यात्मिक जीवन के नवीनीकरण की मांग करता है। उसके लोगों की आत्मिक शक्तियां बड़ी मुद्दत से सुन्न पड़ गई हैं कि प्रत्यक्ष मृत्यु से उनका पुनरुत्थान होना अवश्य है। प्रार्थना और पाप को मान लेने द्वारा हमको सम्राट के राजमार्ग को साफ करना है। जब हम ऐसा कार्य करेंगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर आवेगी। हमको पेंतिकोष्ट की शक्ति की आवश्यकता है। ये शक्ति अवश्य आवेगी क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा भेजने को वायदा किया है, जो सब पर जय करने वाली शक्ति है। हमारे सामने कठिन समय है। हरेक को जिसे सत्य का ज्ञान है जाग कर अपने को देह, आत्मा और प्राण समेत परमेश्वर के सुधार के अधीन रखना चाहिए। शत्रु हमारे पीछे लगा हुआ है। हमें सतर्क होकर अपनी चौकसी करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र पहन लेना चाहिए। हमें नबूवत के आत्मा द्वारा दिए गए आदेशों को अनुकरण करना चाहिए। हमें इस समय की सच्चाई से प्रेम करना तथा उन पुस्तकों द्वारा वार्तालाप की है। उसने हमसे कलीसिया की साक्षियों द्वारा तथा पुस्तकों द्वारा, जिनसे हमारे कर्तव्य तथा हमारी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता मिली है, वार्तालाप की है। चेतावनियों पर जो आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम स्वरूप दी गई हैं, ध्यान देना चाहिए। यदि हम उनकी उपेक्षा करें तो फिर हम कौन सा बहाना पेश कर सकते हैं? मैं उनसे विनती करती हूं कि जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, असली के बदले जाली को स्वीकार न करें। मानवी तर्क को ईश्वरीय पवित्र करने वाले सत्य का स्थान नहीं देना चाहिए। मसीह अपने लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम की ज्वाला सुलगाने को ठहरा हुआ है। जिन लोगों को अनंत सत्यों को प्लेटफॉर्म पर दृढ़ता से खड़ा रहना चाहिए, उन्हें गलत सिद्धांतों को स्वीकृति न देनी चाहिए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि उन मौलिक सिद्धांतों को मजबूती से थामे रहें जिनकी नींव अचूक अधिकार के ऊपर पड़ी है। वचन का प्रेम और उसका ज्ञान हमारी रक्षा। बहुत लोगों के दिलों में जो सत्य में काफी देर से रहे हैं, एक कठोर हाकिमाना भावना प्रवेश कर गई है। उनका स्वभाव तेज, आलोचक और दोषारोपण करने वाले हैं। वे न्यायालय में बैठकर उन लोगों पर दंडाज्ञा सुनाते हैं जो उनके विचारों से सहमत नहीं है। परमेश्वर उनको बुलाता है कि नीचे उतरकर उसके सामने पश्चाताप करें और अपने पापों को स्वीकार करें। वो उनसे ये कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन में फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:4-5। मसीह अपने लोगों से उसके वचन पर विश्वास करने और उस पर चलने की मांग करता है। जो इस वचन को ग्रहण करते और उसको हजम करते हैं, उसको अपने हर कार्य का और हर चरित्र गुणों का एक अंग बनाते हैं। वे परमेश्वर की ताकत में मजबूत होते जाएंगे। ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उनका विश्वास स्वर्गीय है। वे अन्य मार्गों में नहीं भटकेंगे। उनके मन उमंगी तथा उत्तेजनापूर्ण धर्म की ओर नहीं फिरेंगे। दूतों के और मनुष्यों के सामने वे मजबूत, योग्य मसीही चरित्र वाले पुरुष जैसे खड़े रहेंगे। सत्य के सुनहले धूपदान में जिस तरह मसीह की तालीमों में पेश किया गया है, ऐसा मसाला पाया जाता है जिससे आत्मा दोषी ठहरती और उसका मन फिराव होता है। मसीह की साधारणत्व में उन सत्यों को पेश कीजिए जिन्हें वो इस दुनिया में प्रचार करने को उतरा था, और आपके संदेश की शक्ति खुद व खुद महसूस होगी। ऐसी कल्पनाओं और जांचों को पेश ना कीजिए जिनका मसीह ने कभी वर्णन नहीं किया और जिनकी बाइबल में कोई बुनियाद नहीं है। हमारे पास शानदार गंभीर सच्चाइयां पेश करने को है। ये लिखा है, सच्चाई की यही जांच है जिसे हर आत्मा को भली भांति समझना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहिए। आइए हम यहोवा यों कहता है की खोज करें। मानवी रीति रिवाज का तो हमने काफी अनुभव कर लिया है। मस्तिष्क, जिसका शिक्षण केवल सांसारिक विज्ञान में हुआ है, ईश्वरीय बातों को समझने में असफल रहता है। परंतु वही मस्तिष्क जब परमेश्वर की ओर फिर जाता है और शुद्ध हो जाता है, तो वचन में ईश्वरीय शक्ति को देखेगा। केवल वही मन तथा हृदय जो आत्मा की पवित्रता से शुद्ध किए गए हैं, स्वर्गीय विषयों को समझ सकते हैं। पूर्ण समर्पण की आवश्यकता। भाइयों, परमेश्वर के नाम में मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अपने कर्तव्य के प्रति जागो। अपने हृदय को पवित्र आत्मा की शक्ति के हवाले कीजिए और वे वचन को तालीम के ग्रहणशील होंगे। तभी आप परमेश्वर की गहरी बातों को बूझने के योग्य होंगे। मसीह की गवाही। अति गंभीर प्रकृति की गवाही संसार के सामने देनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य की सारी पुस्तक में अत्यंत कीमती, उन्नत करने वाली प्रतिज्ञाएं पाई जाती हैं, और उसमें अत्यंत भयानक, गंभीर अभिप्राय वाली चेतावनियां भी दी जाती हैं। जो लोग सत्य का ज्ञान रखाने का दावा करते हैं, क्या उस साक्षी को जो मसीह द्वारा योहन को दी गई थी नहीं पढ़ेंगे? यहां ना कोई अटकल है, न कोई वैज्ञानिक धोखा ही है। इसमें वे सत्य हैं जो हमारे वर्तमान और भविष्य कुशल क्षेम से ताल्लुक रखते हैं। भूसे का गेहूं हमारे वर्तमान और भविष्य कुशलम से ताल्लुक रखते हैं। भूसे का गेहूं से क्या संबंध है? प्रभु शीघ्र आ रही है। सैहुन की दीवालों पर के पहरुओं की बुलाहट है कि वे अपने परमेश्वर दत्त दायित्व के प्रति जागें। परमेश्वर पहरुओं को बुलाता है जो पुरुष और स्त्रियों को उनकी नींद से जगावें। ऐसा न हो कि वे मृत्यु की नींद सो जाएं।